Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
क्रिप्टोकरेंट के पिछले एपिसोड में हमने बात करी कि मुस्कुराइए, आप बेयर मार्केट में हैं और यह है बेयर मार्केट 2022 की। हमने एक ओवरव्यू देखा और ये समझा कि कैसे इस बेयर मार्केट के लिए हम मोटा मोटा प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एपिसोड थोड़ा स्पेसिफिक होने वाला है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट की जा सकती है। तो इस एपिसोड में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए मैं आपको चार कोर चीज़ें बताऊंगा और अगर आप ये चार चीज़ें समझ गए तो आपकी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी रोबस्ट एंड एक बुलेट प्रूफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्रिएट होगी। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का बेसिस होता है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन का मतलब है कि आप कुछ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में कंसिस्टेंटली पैसा डालिए और उन्हें अक्यूमुलेट करिए। अभी अक्यूमुलेशन की पांच मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। सबसे पहला होता है बाय एंड होल्ड। बाय एंड होल्ड यूजुअली उन लोगों के लिए होता है जिन्हें बस एक बार इन्वेस्ट करना है और उसके बाद कुछ नहीं देखना अगले 10 साल या 15 साल के लिए। ये नॉर्मली वो लोग होते हैं जो सबसे पैसिव और इनएक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यूजुअली उन लोगों के लिए होती है जो सेमी एक्टिव या एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि मैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का एक बेसिक एग्जांपल ये है कि मान लीजिए बिटकॉइन $30,000 पे मैंने लिया, फिर मैंने $25,000 पर लिया, फिर मैंने $20,000 पर लिया और फिर $15,000 पर लिया। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में मैं हर बार थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन अक्यूमुलेट करता जाऊंगा प्री डिफाइंड लेवल्स के ऊपर। तीसरी स्ट्रैटेजी पीरियोडिक बाइंग। पीरियोडिक बाइंग भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, स्पेशली अगेन एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए। पीरियोडिक बाइंग में आप एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कंसिस्टेंटली पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एंड कॉइन्स को अक्यूमुलेट करते हैं। ये पीरियड यूजुअली 7 दिन, 14 दिन, 1 महीना हो सकता है। पीरियोडिक बाइंग का बेस्ट पीरियड मेरे हिसाब से हर 7 दिन है अगर आप लॉन्ग टर्म अक्यूमुलेशन के हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है एंड हर 7 दिन के अंदर आपको बेस्ट एवरेजिंग प्राइस मिल जाएगी। चौथी स्ट्रैटेजी होती है सपोर्ट लेवल बाइस। सपोर्ट लेवल बाइस उन लोगों के लिए है जो टेक्निकल एनालिसिस को भी अच्छे लेवल पे समझते हैं। सपोर्ट लेवल बाइस में बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं, एक कॉइन के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये सपोर्ट लेवल्स यूजुअली डेली, वीकली या मंथली चार्ट्स पे होते हैं और उन सपोर्ट लेवल्स पे हम अपने लिमिट ऑर्डर्स लगाकर छोड़ देते हैं। तो सपोर्ट लेवल बाय एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां पे आप इमीडिएटली शायद कुछ ना बाय करें बट अपने ऑर्डर्स लगाकर छोड़ देते हैं और फ्यूचर में जब प्राइस उन लेवल्स पे मीट होता है तो आपके ऑर्डर्स फिल हो जाते हैं। सपोर्ट लेवल बाइस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको रियल टाइम में उस एक्सचेंज में लॉक्ड इन नहीं रहना और रियल टाइम के अंदर वो कॉइन को बाय नहीं करना, तो एक काफ़ी अच्छी पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। और लास्ट स्ट्रैटेजी होती है ट्रेंड कन्फर्मेशन बाइस। ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड स्ट्रैटेजी है और ये थोड़े से एडवांस्ड टेक्निकल एनालिस्ट लोगों के लिए होती है जो एक ट्रेंड एस्टैब्लिश होने पे ही एक्यूमुलेशन शुरू करते हैं। ये ट्रेंड यूजुअली हो सकता है कि एक बॉटम कंफर्म हो गया या एक ब्रेकआउट और रीटेस्ट कंफर्म हो गया और वहां से या तो वो पीरियोडिक बाइंग करते हैं या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं। तो हमने बात करी मोटा मोटा एक्यूमुलेशन के बारे में। आपको ये समझना पड़ेगा कि वाइल एक्यूमुलेटिंग अगर आपको डिप मिलती है, यानी कॉइंस के प्राइस 30-40% गिर जाते हैं, तो आपको एक रश में या एक फोमो में एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कॉइन 90% गिरने के बाद भी दोबारा 90% गिर सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग नहीं समझते। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक कॉइन ए $100 पर था और जब वो 90% गिरा तो आपने उसे अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करा, 90% गिरने पे उसका प्राइस $10 हो चुका। यहां से कॉइन ए दोबारा 90% गिर सकता है और उसका प्राइस $10 से $1 आ जाएगा और $1 से भी वो 90% दोबारा गिर सकता है। तो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि अक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी कभी भी फोमो या रश में नहीं होनी चाहिए। आपके पास अक्यूमुलेशन के लिए प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेवल्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए चाहे वो टाइम बेस्ड हो या सपोर्ट बेस्ड हो, और एक नंबर ऑफ लिमिट होनी चाहिए कि मैं इतनी बार ही इसको अक्यूमुलेट करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करता हूं तो उसमें मेरा डिफाइंड होता है कि मैं सिर्फ 4 बार इस पर्टिकुलर कॉइन में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करूंगा। अगर मैं पीरियोडिक बाइंग करता हूं तो उसमें डिफाइंड होता है कि मैं पीरियोडिक बाइंग 52 टाइम्स करूंगा, यानी हर हफ्ते एक बार। तो ये टाइम लिमिट डिफाइन करके आप अक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छे लेवल पे कर सकते हैं एंड आई कैन इजीली से कि आप टॉप 5% या 10% इन्वेस्टर्स में आ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आपको अपना इन्वेस्टमेंट मॉडल या थीसिस को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि हर रन में कुछ डार्लिंग कॉइन्स होते हैं, जैसे 2017 में ईओएस, रिपल, मोनेरो एंड डैश। 2021 के भी कुछ डार्लिंग कॉइन्स थे। डार्लिंग कॉइन्स कौन से थे वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा हाइप और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स किस कॉइन के बारे में बात कर रहे थे। तो आप अपने डार्लिंग कॉइन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डार्लिंग कॉइन्स भी काफ़ी लो जा सकते हैं। डेफी 1.0 प्रोटोकॉल्स, काफ़ी सारे लेयर वंस, काफ़ी सारे NFT मेटावर्स गेमिंग कॉइन्स इस साइकिल के डार्लिंग कॉइन्स हो सकते हैं। अभी डार्लिंग कॉइन्स की सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है ये नेक्स्ट बुल मार्केट में अपना ऑल टाइम हाई हिट ही ना कर सकें। तो अगर आपको एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है या एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो आपकी थीसिस इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेके ही क्रिएट की जानी चाहिए। अभी अगर हम बात करते हैं कि एक अच्छा पोर्टफोलियो आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। नंबर वन, आप एक इंडेक्स फंड की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप टॉप 5 या टॉप 10 कॉइन्स में स्टिक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके रिस्क एपेटाइट। नंबर टू, आप सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉन्ग टर्म बुलिश हैं NFTs के ऊपर तो आप NFTs में टॉप 3 या टॉप 5 कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप DeFi में इंटरेस्टेड हैं तो आप DeFi के टॉप 3 या टॉप 5 कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 3, मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग यूजुअली उन लोगों के लिए होती है जो ट्रेंड्स को काफ़ी अच्छे से स्पॉट करते हैं और कैच करते हैं। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में आप स्पॉट कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉइन्स या कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका करेंटली काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। ये थोड़ी सी रिस्की स्ट्रैटेजी है और मैं पर्सनली इसे यूज़ नहीं करता। नंबर 4, बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग। बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग का ये मतलब होता है कि आप सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग और इंडेक्स फंड का एक कॉमन ग्राउंड ले लेते हैं। आप बोलते हैं कि मैं टॉप 5 कॉइन्स में भी इन्वेस्ट करूंगा और सेक्टर बेस्ड कॉइन्स में भी इन्वेस्ट करूंगा। एंड लास्ट इज जैक ऑफ ऑल इन्वेस्टिंग। आप बोलते हैं कि भाई मैं अपनी खिचड़ी खुद पकाऊंगा, मैं अपनी स्ट्रैटेजी खुद क्रिएट करूंगा। ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, खासतौर पर अगर आप इन्वेस्टिंग को अच्छे से नहीं समझते, और काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आप इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझते हैं और आपके पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है। बेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा उन टीम्स पे, उन प्रोजेक्ट्स में जो करेंटली अभी भी अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। 2021 में काफ़ी सारे VC इन्वेस्टर्स, काफ़ी सारे एंजल इन्वेस्टर्स ने भर भर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग अभी तक ख़त्म हो चुकी। बहुत सारे VC इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन प्रोजेक्ट्स से पुल आउट भी करा, क्योंकि इवेंचुअली VC इन्वेस्टर्स या एंजल इन्वेस्टर्स एक नेट पॉजिटिव ROI के लिए ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट? अभी क्योंकि VC और एंजल इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा पुल आउट करना स्टार्ट करा तो बहुत सारे कॉइन्स लगभग डेड हो चुके, क्योंकि उनके पास कोई रनवे या सेफ्टी नेट नहीं था अपनी टीम को कैटर करने के लिए और प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट को फंड करने के लिए। बहुत सारे लेयर वंस ऐसे हैं, बहुत सारे मेटावर्स और NFT कॉइन्स ऐसे हैं जो शायद ये बेयर मार्केट सर्वाइव ही ना कर सकें। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कॉन्टिन्यूसली बिल्ड कर रहे हैं, उनके पास एक अच्छा रनवे है, यानी वो अपनी टीम का खर्चा एटलीस्ट अगले 2 साल तक उठा सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए अच्छा फंड है एंड VCs का अभी भी कॉन्टिन्यूस सपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसका एक मॉडल बताऊं, आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम L1s की बात करते हैं, जैसे कि Binance Smart Chain, AVAX यानी Avalanche, Near, Phantom, Harmony, One, Atom, Rose, अभी देर आर मोर देन 50 लेयर वंस, बट शायद ये सारे लेयर वंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट बुल मार्केट में। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से लेयर वंस ऐसे हैं जो शायद आगे जाके भी एग्जिस्ट करेंगे, और उसके लिए बेस्ट है ये समझना कि किन किन के पास अभी भी VC मनी है और एक रनवे भी है। फॉर एग्जाम्पल, नियर को $400 मिलियन का एक फंड मिला था अपने लेयर वन को प्रमोट करने के लिए और इंसेंटिव प्रोग्राम को रोल आउट करने के लिए, और ये 400 मिलियन 4 साल में धीरे धीरे निकल के डिस्ट्रीब्यूट होने थे 100 मिलियन पर ईयर के हिसाब से। तो नियर का 1 साल कंप्लीट हो चुका और उसके पास अभी भी $300 मिलियन हैं अपने प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए, वर्सेस फैंटम या AVAX ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनमें जो इन्वेस्टमेंट मिली या जो फंड मिला वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यानी 1-1.5 साल तक के लिए ही था। तो अभी हमें नहीं पता कि कौन कौन से लेयर वंस इस फंड के ख़त्म होने के बाद भी एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे GameFi, NFT और मेटावर्स के कॉइन्स हैं जिनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉस्ट बहुत हाई होता है। अगर आप ये चीज़ जानते हैं तो आपको समझ आएगा कि एक गेम क्रिएट करने में या एक वर्चुअल रियलिटी का प्रोडक्ट क्रिएट करने में काफ़ी हाई डेवलपमेंट कॉस्ट जाती है और काफ़ी सारे कॉइन्स की ऑलरेडी फंडिंग खत्म हो चुकी। तो वी डोंट नो इनमें से कौन कौन से कॉइन्स सर्वाइव करेंगे। अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी अपने आप में एक ऐसा मिनी सेक्टर है जिसमें से बहुत सारे एक्सचेंजेस बंद होने की कगार पर हैं, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग ना के बराबर होती जा रही है और एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज अपनी फीस ट्रेडिंग वॉल्यूम से ही कमाता है। तो अगर वॉल्यूम ही नहीं होगी तो एक्सचेंज के पास पैसा ही नहीं होगा उस एक्सचेंज में वापस री इन्वेस्ट करने के लिए या टीम को पे करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर अभी भी अच्छी खासी वॉल्यूम है, हाँ पहले के मुकाबले कम है बट देर इज स्टिल सिग्निफिकेंट वॉल्यूम और वो अभी भी कुछ कुछ फीस तो जनरेट कर ही पा रहे हैं, जैसे कि बाइनेंस, कूकॉइन और इनके अपने टोकन्स भी हैं जैसे कि BNB एंड KCS। तो इनके सर्वाइव करने के चांसेस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के सर्वाइव करने के चांसेस से थोड़े बेटर हैं। देन वी हैव मनी मार्केट टोकन्स जैसे कि आवे, कंपाउंड, कर्व, जिनकी फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन काफ़ी हाई है और इनका मोटा मोटा फीस और पैसा तभी निकलता है जब लोग लेंड, बोरो या इनके बाकी फीचर्स को यूज़ करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के टाइम पे। अगर मैं आपको इन्हें क्वांटिफाई करके बताऊं, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि डीफाई में टोटल वैल्यू लॉक्ड 55% डाउन है, डेक्सेस की वॉल्यूम 50% डाउन है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की वॉल्यूम भी लगभग 50-60% डाउन है। फोर्थ पॉइंट वाइल टेकिंग केयर ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ बेयर मार्केट इज इन्वेस्ट इन योर हेल्थ एंड फ्रेंडशिप्स। आपको लगेगा कि मैं क्रिप्टो के पॉडकास्ट में ये कहाँ का ज्ञान दे रहा हूँ, बट जी नहीं, ये ज्ञान एक्चुअली रिसर्च बैक्ड है। वर्ल्ड के टॉप रिसर्चर्स का ये मानना है कि अगर आपके पास आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, आप अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंस, कॉग्निटिव कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ काफ़ी हाई होता है उन लोगों के कंपैरिजन में जिनका फिजिकल वर्कआउट या एक्टिविटी जीरो है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है एंड दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन अदर सब्सटेंसेज लाइक TV, अल्कोहल और ड्रग्स। If you have friends or family around you, तो ये बहुत अच्छा टाइम है उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी हैबिट है जो आपको डेफिनेटली बेटर फोकस और बेटर क्लैरिटी देगी इस बेयर मार्केट में एक अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्राफ्ट करने के लिए। ये भी बोल सकते हैं कि कुछ चीज़ें पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि हेल्थ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये टाइम आपके पास एक ऐसा गोल्डन टाइम है जहां पर आप उन लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि करेंटली मार्केट एक्टिविटी काफ़ी डाउन है, मीडिया कवरेज काफ़ी डाउन है और इन्फ्लुएंसर नॉइस भी काफ़ी कम है क्रिप्टो को लेके, तो आप कुछ ऐसा मोटा मिस भी नहीं करेंगे। एंड रिसर्च के लिए काफ़ी टाइम है क्योंकि बेयर मार्केट्स यूजुअली 12 से 18 महीने तक एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि 1 से 1.5 साल तक। तो अगर हम ये भी सोच के चलते हैं कि नवंबर के बाद से बेयर मार्केट स्टार्ट हुई, तो अभी हमें सिर्फ 6 महीने हुए हैं इस बेयर मार्केट में और हमारे पास लगभग आधे से 1 साल और है मिनिमम इस बेयर मार्केट के लिए, अगर ये 2018 जितनी ही लंबी होती है। और उसके बाद भी बिटकॉइन की नेक्स्ट हाविंग 2024 मई में है। 2024 मई के बाद ही अगर हम पुराने साइकिल से कंपेयर करते हैं तो चांसेस हैं कि बुल मार्केट वापस रिज्यूम होगी। तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है जहां पर आप इन चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हैं। तो जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, हमने 4 चीज़ों के ऊपर बात करी एक अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले अक्यूमुलेशन, देन एडजस्टिंग योर थीसिस जिसके अंदर हमने बात करी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में, देन फोकसिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स जिनकी डेवलपमेंट एक्टिविटी अभी भी चालू है एंड फाइनली इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ, सपोर्ट सिस्टम, फैमिली एंड फ्रेंडशिप्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड से आपको कुछ अच्छे इनसाइट्स मिले होंगे जो आप यूज़ कर सकेंगे इस बेयर मार्केट को ना केवल सर्वाइव करने के लिए बट अगली बुल मार्केट में थ्राइव करने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा क्रिप्टो करेंट के नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर हम बात करेंगे कुछ और चीजों के बारे में जो आपको ये बेयर मार्केट को डील करने में काफी हेल्प करेंगे।
दिस वॉज एन HT स्मार्ट कास्ट ओरिजिनल HT स्मार्ट कास्ट।